ओम शांति। मन उपवन को निर्मल करती, निश्चिंत करती सबके जीवन को, स्नेह त्याग की प्रतिमूर्ति, उमंग उत्साह और खुशियों से भर देती हर दिल को, ऐसी आदरणीय मीरा दीदी जी का हम सभी करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं। आपकी क्लास का विषय ही है निरंतर खुश रहना और सदा खुशी बांटते रहना। वर्तमान समय की महती आवश्यकता खुश रहना है और खुशी बांटना है। आप 68 से ज्ञान में आए, मैसूर से आपने ज्ञान लिया, साकार बाबा से भी आप मिले और बाबा की पालना भी आपने ली। 7-8 साल से आपने भारत में सेवाएं की, इसके पश्चात आप सन 77 से विदेश की सेवा में गई और वहां 50 से 60 देशों में वहां की आत्माओं में ज्ञान की अलख जगाई। वर्तमान समय आप मलेशिया और आसपास के सेंटरों की संचालिका हैं, आदरणीय मीरा दीदी जी।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सभी ने 3 बार ओम शांति की। आज इसका रहस्य यही हम कहेंगे। पहली ओम शांति हम बाबा को बाप के रूप में थैंक्स देते हैं और दूसरी ओम शांति बाबा को टीचर के रूप में ओम शांति करके थैंक्स देते हैं और तीसरी ओम शांति सद्गुरु के रूप में बाबा को थैंक्स देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम अपने जीवन को हम देखते हैं, आज हम क्या थे और बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया। आप भी अपने बचपन के दिन, ज्ञान के बचपन के दिन को याद कीजिए। आप में से बहुत आत्माएं जब बाबा के पास आए तो कैसे आए? कोई तो इतनी दुखी थे, कोई इतनी भटक रहे थे, कोई जीवन के निराश के अनुभव करने वाले थे। ऐसे ऐसे आत्माएं आए और आज बाबा ने हमको, हमारे जीवन को क्या बना दिया। रोने वालों को हंसना सिखा दिया, दुखी जीवन को सुखी बना दिया और भटकने से हमको छुड़ा दिया। मुझे याद है कि जिस दादी से हमने पालना ली थी, हृदय पुष्पा दादी, चंद्रमणि दादी की बड़ी बहन, तो वो सब जब ज्ञान में आए थे तो उनके जीवन में बहुत दुख था, क्योंकि उसकी पति, लौकिक पति, कुछ दिनों के पहले ही शरीर छोड़ दिया था। तो जब उनको बाबा के पास लेके आए साकार में, कराची में, तो बाबा ने पहला प्रश्न उनसे यही पूछा, आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं एक दुखी आत्मा हूं, अशांति आत्मा हूं। ये दुनिया कैसा है? दुखमय है, अशांतिमय दुनिया है, क्योंकि वही अनुभव था। फिर बाबा ने उनको बिठा के बहुत सिंपल ज्ञान दिया, एक पेपर लेकर के एक शरीर लिखा और उसके बीच में एक बिंदु लगाया और कहा कि देखो, ये शरीर 5 तत्वों का पुतला है, आप ये शरीर नहीं हो, पर इस शरीर को चलाने वाली ये भ्रुकुटी के बीच में चमकती हुई सितारा हो, आप शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, बस। फिर बाबा ने दृष्टि दी, बस दादी उसी समय उस अनुभव में चले गए। और कितने समय तक वो अनुभव में खोए हुए थे, फिर उसके बाद जब नीचे आए, फिर बाबा ने पूछा, अभी आप कौन हो? तो दादी ने उत्तर दिया, मैं बहुत शांति स्वरूप आत्मा हूं। ये दुनिया आपको कैसे लगती है? तो कहा कि बहुत शांतिमय है। तो देखिए, बाबा की एक दृष्टि नजर निहाल कर दिया, जो प्राप्ति आत्मा को चाहिए था वो जीवन में दे दिया। तो आज हम सभी चाहते हैं खुश रहे, क्योंकि कहा जाता है खुशी जैसा खोराक नहीं, चिंता जैसा मर्ज नहीं। माना चिंता जैसे बीमारी कोई नहीं है, और खुशी जैसा खाना टॉनिक और कोई दवाई नहीं है। तो कई बार बाबा हम सबसे ये प्रश्न पूछता है कि आप सभी सद खुश हो? हम सभी हाथ उठाते हैं। अभी भी हम अगर आपको कहेंगे आप सभी खुश हो, हाथ उठाएंगे? जो खुश है हाथ उठाए। सभी उठाया, बहुत अच्छी बात है। दूसरा प्रश्न बाबा पूछते हैं, आप सदा खुश हो? कौन हाथ उठाएंगे? सदा, सदा का शब्द याद रखना, 24 आवर्स, जन्म से मरने तक एक घड़ी भी दुख की लहर ना आवे। तो इसमें कभी कभी का शब्द आ जाता है, है ना? पर चाहते हैं हम सदा खुश रहे, परंतु परंतु आ जाता है, तो कभी खुशी खो जाते हैं, कभी खुशी कम हो जाता है, तो सदा नहीं रहता। तो बाबा ने उसी दिन फिर से अंडरलाइन कराया कि बाबा को कभी कभी शब्द पसंद नहीं है। बाबा अविनाशी है, तो बाबा को कौन सा शब्द पसंद है? निरंतर, सदा। तो खुश भी रहते हैं, पर क्यों नहीं सदा वो खुशी को कायम रखे? उसके लिए हमको क्या करना है, किन किन बातों का अटेंशन हम रखें, ताकि हमारी खुशी कोई हमारे से छीन न सके। इसलिए सबसे पहले ये समझना होगा कि खुशी कहाँ है, खुशी किस में है। कई बार हम सोचते हैं खुशी बाहर से आती है, कोई हमारी महिमा करते हैं, मुझे जो चाहिए वो मिल जाती है, मेरी इच्छाएं पूर्ण हो जाता है, तो हम खुश हो जाते हैं। परंतु वास्तव में खुशी बाहर से नहीं आते हैं, खुशी इसके साथ संबंध नहीं रखता है कि मेरे पास क्या है। कई लोग ये भी समझते हैं कि अगर हमारे पास बहुत धन होगा, हमारे पास बहुत संपत्ति होंगी, हम बड़े बड़े कार में ड्राइव करेंगे, बड़े बड़े मकान में रहेंगे, तो हम खुश रहेंगे। खुशी उन सब चीजों में नहीं रखा है, खुशी अंदर की चीज है। तो खुश रहना ये मेरा स्वधर्म है, सत चित आनंद। आत्मा का निज गुण है आनंद, खुशी। तो इसलिए खुशी के लिए हमको बाहर देखने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमको सदा खुश रहना है तो हम बहुत सिंपल बातें हम आपको सुनाएंगे। सबसे पहले सदा अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित रहना है। जो सदा आत्मिक स्मृति में स्थित रहते हैं उनकी अंदर की खुशी कोई भी छीन नहीं सकता। कई बार हम लोगों ने दादी गुलजार से सुना है, दादी कहती है कि अगर कोई भी बात से, चाहे सेवा है या संबंध है, अगर उससे आपकी खुशी गुम हो जाती है, वो बात को आप छोड़ दीजिए पर खुशी को नहीं छोड़िए। मरने का भी समय आ जाए तो हम खुशी खुशी से मरे परंतु खुशी को कभी नहीं छोड़ना है। तो उसके लिए सबसे पहली बात, हम बार बार यही प्रश्न अपने आप से पूछते रहे, मैं कौन और मेरा कौन। ये दादी जानकी ने हम सबको ये पाठ बहुत अच्छी तरह से पक्का कराते रहते हैं, फिर भी हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, मैं कौन और मेरा कौन। मैं सिर्फ आत्मा नहीं हूं परंतु ईश्वरीय संतान हूं। मेरा बाप ईश्वर है जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, उन्होंने हमको ढूंढ करके अपना बनाया है। ये स्मृति हम कभी भी ना भूलें। आज भी हम देखते हैं ना, कोई रॉयल घराने के बच्चे होते हैं तो वो कभी भी अपने फैमिली को भूलते नहीं है, माँ बाप को नहीं भूलते। तो सबसे बड़ी भूल हम ये करते हैं कि मैं और मेरा कौन है, ये स्मृति से विस्मृत हो जाते। तो ये अभ्यास हम निरंतर करते रहे। तो जैसे आत्मा अविनाशी है, जैसे बाबा अविनाशी है, बाबा द्वारा जो हमको सुख मिला है, खुशी मिली है वर्षे के रूप में, वो भी अविनाशी है, तो हम भी उसको सदा कायम रख सकते हैं। अविनाशी आत्मा की स्मृति से, अविनाशी परमात्मा की स्मृति से और अविनाशी वर्षे की स्मृति से हमारी खुशी भी सदा रहेंगे। आप एक्सपेरिमेंट ट्राई करके, प्रयोग करके देखिए। और दूसरी बात, खुशी को कायम रखने के लिए, सदा काल बनाकर रखने के लिए अपने विचारों के ऊपर हमको अटेंशन देना है। इंग्लिश में कहते हैं ना कि एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। अगर हम सदैव आशावादी रहेंगे, ऑप्टिमिस्ट रहेंगे, तो हमारी खुशी कभी भी गायब नहीं हो सकता। पर इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑप्टिमिस्ट हम पेसिमिस्ट हो जाते, वरना कोई भी बात हमारे सामने आती है उसकी जो अच्छाई के तरफ देखने के बदले उसकी बुराई के तरफ देख लेते हैं। वैसे हमको चॉइस है, दोनों साइड है, अच्छाई भी है बुराई भी है, परंतु देखने वालों को चॉइस है। अगर हम यही चॉइस चूज करें कि हमको अच्छाई को ही देखना है तो कभी भी हमारी खुशी कम नहीं होती। नो डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिमिस्ट एंड पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट जो है आशावादी, सदैव ब्राइट साइड देखते, अच्छाई की तरफ देखते, तो इसलिए उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होने के कारण, उसकी सकारात्मक विचार चलने के कारण उसके अंदर खुशी बनी रहती है। परंतु जब हम निराशावादी बन जाते, पेसिमिस्ट बन जाते हैं, तो बुराई की तरफ देखते हैं, तो उसका नतीजा हमारी खुशी खत्म हो जाती। सो बी एन ऑप्टिमिस्ट। अपने दृष्टिकोण को देखते रहिए कि हमारी दृष्टि कहाँ जाती है। जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। पर परिस्थिति ने हमारी खुशी को गुम नहीं किया, परंतु हमारी दृष्टि ने, हमारी स्मृति ने, हमारी स्थिति ने अपनी खुशी को गुम किया। तो इसलिए बहुत सहज है सिर्फ अपने संकल्प के ऊपर, अपनी वृत्ति के ऊपर अटेंशन दे कि हमारी विजन क्या है, ऑप्टिमिस्ट या पेसिमिस्ट। दैट इज व्हाई दे से एन ऑप्टिमिस्ट लव्स टू फॉरगेट बट ए पेसिमिस्ट फॉरगेट्स टू लव। माना सदैव हर्षित मुख हमारा तब रहेगा खुशी से जब हम कोई भी बात हो जाए, किसी ने कुछ भी कह भी दिया, कोई हर्जा नहीं। अभी अभी गीत में सुना ना, अगर हमने खुशी अपना गुम कर दिया क्योंकि किसी ने मेरे को कुछ कहा, तो हमारे लिए नुकसान है ना। तो इसलिए हमको ये समझना है कि कोई भी कुछ भी कहे, कुछ भी होता रहे, परंतु उसमें भी भलाई है, अच्छाई में भी भलाई है, बुराई में भी भलाई है। तो अगर हम इसको इस प्रकार से देखते हैं तो हमारी खुशी कभी भी गायब नहीं हो सकता। एक दूसरी विधि हम आपको सुनाते हैं। तो अपनी दृष्टि सदैव आशावादी रखे, अपनी वृत्ति सदैव सकारात्मक विचारों में रखे, तो आप देखेंगे कि आपकी खुशी बनी रहेगी। इट्स ऑल इन द माइंड। और तीसरी विधि है सदा खुश रहने के लिए, बहुत सहज विधि। कई बार बाबा ने बताया है कि हमको, वैसे कहा जाता है हफ्ते में 7 दिन है, तो हम तो कहते हफ्ते में 3 दिन है, 3 दिन है बस, कल, आज और कल। तो जो कल है वो बीत गया, अभी वापस नहीं आएगा। जो कल है, टुमारो, इट इज येट टू कम। अभी हम कहाँ हैं? प्रेजेंट टाइम। तो जिसको ये कला आता है ना, लिविंग इन द प्रेजेंट, अभी अभी जो समय हम संगम युग में खड़े हैं, संगम युग का एक एक मोमेंट चल रहा है, वैल्यूबल, अगर उसको हम पूरी रीति से यूज करते जाए तो प्रेजेंट जब पास्ट हो जाएगा तो हमको चिंता नहीं होगी। जब हम प्रेजेंट को सही रूप से यूज नहीं करते, तो जब प्रेजेंट बीत जाता है तो फिर हम बैठ के चिंता करते हैं। जो चिंता करता है उसको कभी खुशी नहीं हो सकती। इसलिए कहा जाता है डोंट वरी बी हैप्पी। वरी एंड हैप्पीनेस, खुशी और चिंता दोनों साथ साथ नहीं चल सकता। और चिंता विशेष रीति से होता ही है बीती हुई बातों के बारे में। तो हमको क्या सीखना है? पास्ट इज पास्ट। बाबा ने भी तो यही होमवर्क दिया है ना, कि बीती हुई बातों को बिंदी लगाओ, उसमें भी कुछ अच्छाई है उसको सीख करके बिंदु लगाओ, और भविष्य के बारे में बहुत एंग्जाइटी नहीं रखे। यू नो, कई बार हम इमेजिन करना चालू करते हैं, अनुमान, शक का शिकार, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। तो इसलिए भविष्य में रहेंगे तो भी हम वर्तमान समय का फायदा नहीं ले सकते। तो अगर हम वर्तमान समय के महत्व को जान करके जो करना है उसी समय हम करते जाए ना। कई बार बाबा कहते हैं ना कि समय बहुत कम है, तो कई लोग पूछते हैं कि कितना कम समय है, 1 साल है, 2 साल है, 10 साल है, कम से कम बाबा इतना तो बता देवे तो हम अपना पुरुषार्थ अच्छा करेंगे। तो वास्तव में कम समय किसको कहा जाता है? कितना कम समय है? समय हमारा हाथ में जो है ना वो अभी नाउ, बस ये घड़ी हमारे हाथ में है बस, क्योंकि हमको पता नहीं है कि नेक्स्ट घड़ी हम इस शरीर में है या नहीं। तो कम समय माना नाउ, अगर हम अभी नहीं करते हैं तो कभी नहीं कर सकेंगे। तो हमको वर्तमान समय में लर्निंग टू लिव इन द प्रेजेंट हमको शक्ति देता है अच्छा कर्म करने का। और जो अच्छा कर्म करते जाते हैं, अच्छा कर्मों का खाता अपने अंदर जमा करते जाते हैं, उसके जीवन में कोई प्रकार का चिंता और भय नहीं होता है, क्योंकि सदा खुश रहने के लिए ये दो बातों से निवृत्त होना है, चिंता और भय। क्योंकि जो भयभीत मनुष्य होता है वो ऐसे ही है जैसे कि कोई फांसी पर चढ़ा हुआ हो, और चिंता करने वाला मनुष्य ऐसे ही होता है, अपने को चिता पर जलाता रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों में खुशी कैसे? तो अगर हमको खुश रहना है, सदा खुश रहना है, तो बीती हुई बातों से भले हम अच्छाई को लें और भविष्य के लिए प्लान बनाएं, परंतु उसके बारे में हम हवाई महल यानी डे ड्रीमर नहीं बन जाएं, वर्तमान समय के महत्व को ना जान करके। तो आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, जो सदा वर्तमान समय में रह करके, प्रेजेंट में रह करके कर्म करते हैं, उनका जीवन दूसरों के लिए प्रेजेंट बन जाता है। प्रेजेंट माना उपहार बन जाता है, उनके जीवन प्रेरणादायक बन जाता है, इंस्पिरेशनल बन जाते हैं, क्योंकि वो कुछ भी व्यर्थ नहीं गवाएंगे, क्योंकि उसके जीवन में कोई पश्चाताप नहीं होगा। इसके लिए हम तो यही कहेंगे कि सदा खुश रहने के लिए ये तीसरी विधि हम अपनाएं कि लिविंग इन द प्रेजेंट। एक एक सेकेंड को भी लास्ट मोमेंट समझ करके हम उसको यूज करें तो हम पूरा उसका फायदा लेंगे। तो ऑटोमेटिकली हमारे मन में कोई भी पश्चाताप नहीं रहेगा, हम ये कर सकते थे, वो कर सकते हैं, क्योंकि खुशी गुम क्यों होता है? पश्चाताप के कारण। कई बार जाने अनजाने हमारे से ऐसे कर्म हो जाता है, कर्म करने के बाद हमारे दिल खाती है, ये हमको नहीं करना था, ये नहीं बोलना था। अगर हमारा दिल साफ है, बाबा ने उसी दिन स्लोगन में बताया ना, दिल साफ तो मुराद हासिल। तो अगर हमारा दिल साफ है तो हमारी सब इच्छाएं पूर्ण होंगे, हमको इच्छाओं के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके लिए हमको सदा खुश रहने के लिए हमारी दिल साफ, सच्चाई सफाई चाहिए। आप देखिए छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे सदैव हंसते रहते हैं, सदैव खुश रहते हैं, कोई भी चिंता कोई भय नहीं। क्यों? क्योंकि दिल साफ है, किसी की बात, पास्ट की बात, पराये बात, परचिंतन की बात बुद्धि में नहीं रखते। कोई भी बात हो गई दो मिनट फिर भूल जाते, परंतु हम बड़े क्या करते हैं, किसी किसी की बात बरसों तक हमारी दिल में जमा करके रखते, वो बार बार हमको सताते हैं, हमारी खुशी को गुम कर देता। तो इसलिए मैं चौथी युक्ति ये बताना चाहती हूं कि हम दिल को इतना साफ रखे, उसके लिए हमको एक पाठ जरूर सीखना है, टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। कोई हर्जा नहीं किसी ने कुछ कह दिया हो, किसी ने कुछ कर दिया हो, भले मतलब कोई नहीं है, परंतु हो गया तो हमने क्षमा किया, भूल गए, यानी भुलाने की शक्ति चाहिए। तो कई बार लोग कहते हैं बहन जी हम ये बात भूल ही नहीं सकते, कई बार कहते हमको ये बात याद आता ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो इसका मतलब कि हम सबके अंदर दो आदतें पक्की है, याद करना भी आता है और भूलना भी आता है। परंतु गलती हम क्या करते हैं पता है, जो बात को भूलना है उसको याद करते हैं और जो बातें याद करना है उसको भूल जाते। तो इसलिए हमारी खुशी कभी अच्छी रहती है कभी अच्छी नहीं रहती। तो हमको क्या करना है, जो बातें याद करना है वो याद करना है, बाकी जो भूलना है आपे ही भूल जाएंगे, हमको बुलाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। जैसे जहां पर अंधकार होता है आपको रोशनी चाहिए तो आप क्या करेंगे, रोशनी स्विच ऑन कर दिया तो अंधकार आप भाग गए, अंधकार को भगाने की कोशिश नहीं करते, दुख को भगाने की कोशिश नहीं करना पड़ता है। परंतु हम अपने दिल को साफ रखें, किसी की कोई भी बात दिल में जमा करके नहीं रखें, क्योंकि नुकसान हमको होता है उसको नहीं होता। तो इसके लिए आज से लेकर हम दिल से जिसने भी जो कुछ हमको कहा हो किया हो उसको माफ कर दें और फॉरगेट कर दें, तो आप देखेंगी आपकी खुशी कोई कभी छीन नहीं सकते। आप देखिए आपका अनुभव कोई आप याद कर लिए कि जब हम बाबा के पास आए तो हम कैसे आए थे, कितने भूले की थी, कितना बाबा की ग्लानी की थी, परंतु बाबा ने इतना प्यार दिया बुला करके, तो हम भी भूल गए, बाबा भूल गए तो हम भी भूल गए। तो इसलिए हमको प्रैक्टिकली ये धारणा चाहिए सदा खुश रहने के लिए, दिल साफ, सच्चाई और सफाई। अगर थोड़ा भी सच्चाई में कमी है तो भय जरूर होगा, तभी तो कहा जाता है ना कि सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो अगर हमारी सच्चाई की कमी है तो हम कभी भी खुशी से नाच नहीं सकते। तो हम अपने आप से पूछना है कि जैसे बाबा ने गॉड इज ट्रूथ कहते हैं ना, तो बाबा ने सच्चाई से सब कुछ हमारे आगे बाबा ने रिवील कर दिया, तो क्या हम भी बाबा के आगे ऐसे अपने आप को प्रत्यक्ष किया है? तो ऑटोमेटिकली हमारे दिल में कुछ भी नहीं है छिपा हुआ, तो हम बच्चे की तरह नाचते रहेंगे। तो कई बार हम लोगों से पूछते हैं क्यों नहीं हम सुनाते हैं, जो भी बात है क्यों नहीं सुनाते, डर कि हमको सजा मिलेगा, लोग क्या समझेंगे। परंतु सच्चाई से चलने वालों को सजा कम मिलती है, सच्चाई नहीं मिलती, मैंने सजा नहीं मिलती, क्योंकि सच्चाई से हमने सुनाया तो माफ हो जाता है। तो बच्चे की तरह हम बच्चा बन जाए, बचपना नहीं रहे पर बच्चा बन जाए, तो ऑटोमेटिकली वो खुशी हमारा अंदर से नेचुरली दिखाई देगा। क्यों बच्चे सदैव हंसते रहते हैं, गाते रहते हैं, नाचते रहते हैं, ये खुशी की निशानी है, दिल में कुछ नहीं है। तो हम भी बच्चे बन जाए, तो ऐसे अगर हमारे जीवन बना के रखेंगे तो हम खुशी से नाचते रहेंगे, गाते रहेंगे, हंसते रहेंगे। तो ये विधि हम जरूर अपनावे, ये चौथी बात। तो पांचवी बात हम ये सुनाना चाहते थे कि खुशी जीवन में तब आ सकती है जब मानव के जीवन में संतुष्टता है। कई बार हम प्रश्न पूछते हैं क्लास में, संतुष्टता पहले चाहिए या खुशी पहले चाहिए, आप लोग क्या समझते हैं? पहले संतुष्टता चाहिए ना, अगर हमको जीवन में संतुष्टता है तो खुशी ऑटोमेटिकली आ जाती। कहां न कहां असंतुष्टता है, हम संतुष्ट नहीं हैं। क्यों नहीं संतुष्ट हैं? क्योंकि हम अपने जीवन को दूसरों के जीवन से भेंट करते हैं। इनके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, ये काम ये कर सकता है, मैं नहीं कर सकती हूं।
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बलदार ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो।
शांति। सो संतुष्टता किसको कहा जाता है? ऐसा नहीं कि मुझे जो कुछ चाहिए वो सब मेरे पास हो तब हम संतुष्ट हैं, ये नहीं हो सकता। परंतु संतुष्टता का मतलब जो कुछ हमें मिला है, जो पार्ट मिला है, जो संबंध है, जो जहां पर भी हम रहते हैं, जिसके साथ भी हम रहते हैं, उसमें हम तृप्त हैं, संतुष्ट हैं। तो उसके लिए हमको ये सोचना है कि हर एक आत्मा को अपने अपने कर्मों के अनुसार जो मिलना है उतना ही मिलना है। तो मुझे भी अपने कर्मों के अनुसार जो मैंने कर्म किया है उसके अनुसार मुझे फल मिला है, इसलिए मैं उसमें संतुष्ट हूं। दूसरे को ज्यादा है अप्रिशिएट हम करेंगे, पर हम कंपटीशन नहीं करेंगे, कंपैरिजन नहीं करेंगे। उससे क्या हो जाता है, या तो ईर्ष्या हो जाती है या तो हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो इसलिए सदैव संतुष्ट रहने के लिए जो हमको मिला है कोई ने उसी दिन मेरे को कहा कि उसके जीवन में कुछ ऐसा संगठन हो गया था, उसकी वाइफ बीमार से मर गई थी, तो उसने सोचा कि चलो भगवान ने हमको दिया था, वो भगवान ने मेरे से ले लिया। तो हमने उसको कहा कि भगवान देता भी नहीं है और लेता भी नहीं है, हम अपने अपने कर्मों के अनुसार हम अपने लिए करते हैं। तो अगर ये कर्मों का ज्ञान हमारी बुद्धि में स्पष्ट है तो हम जैसा है वैसे हम अपने को एक्सेप्ट करके हम उसमें संतुष्ट रहेंगे, तो उसमें हम खुश रह सकते हैं। सो संतुष्टता की कमी के कारण तो कई बार हम जबरदस्ती दूसरों से कुछ लेना चाहते हैं, जबरदस्ती अपने लिए लेना चाहते हैं, उसमें बहुत संघर्ष चलता है। तो पहले हम तृप्त रहे, भगवान को धन्यवाद करें कि जो कुछ है अच्छा है, तो भरपूरता महसूस होती है। तृप्ति माना भरपूर, अपने आप को भरपूर महसूस करना है, तभी हम तृप्त रहेंगे, तब संतुष्ट रह सकते। तो संतुष्ट आत्मा को सदा खुशी रहेंगे। सिर्फ संतुष्ट अपने से नहीं, संतुष्टता तीन प्रकार की, अपने आप से भी संतुष्ट, दूसरे सभी मेरे से संतुष्ट और बाबा भी मेरे से संतुष्ट। तभी बाबा ने कहा ना कि संतुष्ट मणि बनना है। सदा खुश रहने के लिए, सिर्फ कभी कभी खुश रहने के लिए चलो हम अपने आप से संतुष्ट हैं, हम खुश रहते, इतने में नहीं चलेगा। अगर सदा खुश रहना है तो तीन सर्टिफिकेट हमको लेना है, अपने आप से भी सर्टिफिकेट, बाबा से भी सर्टिफिकेट, और जिसके साथ हम संपर्क संबंध में रहते हैं वो भी हमारे से संतुष्ट। जब ऐसे संतुष्ट मणि बन जाएंगे तो सदा संतुष्ट रहेंगे। देखिए सत्युग में सत्युग को कहा ही जाता है सुखधाम, जहां पर सब आत्मों के अंदर यही धारणा है इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा क्या होती है उस शब्द का ही अविद्या। तो सदा संतुष्ट रहने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या, वरना इच्छा क्या होता है वो शब्द की भी अविद्या हो जाए, क्योंकि जितना ज्यादा इच्छा उतनी ज्यादा प्रॉब्लम, उतनी ज्यादा खुशी कम, वो कभी संतुष्ट नहीं रह सकते, क्योंकि एक इच्छा पूरी होंगी तो दूसरी आ जाएंगे, तीसरी आ जाएंगे। इसलिए बाबा ने एक बार कहा था इच्छा के पीछे दौड़ना ऐसा ही है जैसे आपकी छाया को पकड़ने के लिए आप जा रहे हैं। हम अपनी छाया को कभी हम पकड़ सकते हैं? तो ऐसे आपकी अपनी इच्छा पूरी होंगी नहीं। और ये भी एक लॉ है ड्रामा में, जब मैं चाहिए 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 का शब्द खत्म करेंगे तब मेरी चाहना पूरी होंगी। और वो भी कहा जाता है ना, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट। नीड मींस जो भी जरूरत है वो सबको है ही, वांट चाहिए जो है ना वो ग्रीड है, लोभ, लोभ से कोई लाभ नहीं। तो इसलिए हमको अगर सदा खुश रहना है तो इच्छा मात्रम अविद्या, इसको दूसरे शब्द में कहेंगे संतुष्ट मणि। बस हमको सब कुछ है, सब कुछ है, अगर हमको कुछ कमी महसूस होती है फिर चाहिए का शब्द आता है तो हमारी खुशी खत्म हो जाती है। वो होता ही तब है जब हम दूसरों के साथ अपनी कंपैरिजन करते। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को क्या याद दिलाते हैं कि प्राप्ति को गिनती करो, प्राप्ति स्वरूप बन जाओ। जब हम प्राप्ति को गिनती करते रहेंगे हमारी खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। एक दिन आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि सुबह से लेकर शाम तक, बस आज प्राप्ति का दिन, हमको सारा दिन प्राप्ति को ही याद करना है, गिनती करना है, तो आप देखेंगे आपकी खुशी का पारावार नहीं रहेगा। क्योंकि इतनी प्राप्ति बाबा ने कराया है, इतनी प्राप्ति हम गिनती भी नहीं कर सकते, यू नो। परंतु हम प्राप्ति के बजाय भूल क्या करते हैं, जो त्याग किया है ना, जो छोड़ा है उसको ज्यादा स्मृति में लाते, तो उसमें भारीपन हो जाता है। हमने इतना त्याग किया, मिला क्या? हमने इतनी सेवा की, मिला क्या? सेवा तो खुशी खुशी से करना चाहिए ना। किया भी सेवा, परंतु गिनती किया, मैंने सेवा किया तो मेरे को इतनी महिमा मिली, उसने किया तो उसको ज्यादा मिला। तो क्या हुआ? सेवा की खुशी नहीं, कंपैरिजन ना। कई बार हमने देखा है, उन दिनों में बाप दादा पर्सनल मुलाकात करते थे ना, तो बाबा हरेक को वरदान देते थे, तो कोई कोई तो ये भी कंपैरिजन करते थे, बाबा के सामने बाबा ने मेरे को इतना लंबा वरदान दिया, इसको इतना छोटा दिया। खुशी गुम, माना मिला ना वरदान, बाबा ने इसको लंबा दृष्टि दिया, मेरे को तो देखा ही नहीं, इतना दृष्टि दिया थोड़ा। परंतु भक्ति मार्ग में हम चाहते थे कि एक दर्शन के प्यासी हूं, तो भगवान की एक सेकेंड की भी दृष्टि मिल गई तो बहुत बड़ी बात है। तो मिला क्या है, पाया है। हम लोग गीत क्या गाते हैं, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है, जमी तो जमीन आसमान पा लिया है। तो अगर ये सच्ची गीत है तो खुशी क्यों गम हो जाती? बाबा को एक मिला तो सारी दुनिया मिल गई ना, जो पाना था सो पा लिया, फिर चाहिए कहां से? तो हम लोग बेहद में नहीं रहते, हद में आ जाते हैं। तो हम आपको ये होमवर्क देते, एक दिन आप प्रयोग करके देखिए, आज सारा दिन अभी से लेकर कल तक प्राप्ति क्या हुई है, बाबा से क्या मिला है, पाया क्या है। बस यही गीत, अनहद गीत बजते रहे तो आप खुशी से नाचते रहेंगे, क्योंकि बाबा से इतनी प्राप्ति हुई है, हम समा भी नहीं सकते। परंतु वो छोड़ करके उसको क्या मिला है, वो ही मेरे को चाहिए। तो हमारे पास जो है हम यूज नहीं करते, तो है छोटा कारण, परंतु हम अपने को दुखी करते रहते। तो इसलिए ये भी बहुत अच्छी विधि है, प्राप्ति स्वरूप। तो उसमें ज्ञान भी आ जाता है, योग भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो बाबा कहते हैं ना कि हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। अगर आपके पास सिर्फ वेल्थ है तो भी हैप्पीनेस नहीं, आपके पास सिर्फ हेल्थ है तो भी हैप्पीनेस नहीं। हैप्पी रहने के लिए क्या चाहिए? हेल्थ एंड वेल्थ दोनों चाहिए। तो हमारी हेल्थ कौन सी, हमारी वेल्थ कौन सी? भले हम शरीर से बीमार है, शरीर बीमार है, पर मन बीमार नहीं हो। इसका मतलब कि शरीर में दर्द है पर आत्मा को दुख नहीं हो, तभी हम कहेंगे आत्मा तंदुरुस्त है, शरीर हिसाब किताब चुक तो कर रहा है। तो हेल्थ का मतलब क्या, कि माया रूपी बीमारी आत्मा को न लगे, विकार रूपी बीमारी आत्मा को न लगे, तभी हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, तंदुरुस्ती। अगर माया की कोई भी विकार रूपी बीमारी आत्मा को आ गई तो हमारी खुशी खत्म। हमारी वेल्थ कौन सी है, ये डॉलर्स रुपीस नहीं, हमारा वेल्थ है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। तो बाबा रोज हमको कितना अविनाशी ज्ञान रत्नों से सजाते हैं, हीरे मोतियों से सजाते हैं। तो अगर हम उसको ही देखते रहे ना, कई बार बाबा ने यह भी स्वमान दिया है, यू आर द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि सबके खजाने सारे मिट्टी में मिल जाएंगे, परंतु अविनाशी खजाने जो बाबा से जमा किया है वो हम हाथ में ले जाएंगे, हाथ बरतू जाएंगे। तो हमको ये कभी विस्मृत नहीं होना चाहिए कि हम कितने शौकार हैं, इतने ऐश्वर्यवान हैं, कितने ज्ञान रत्नों से बाबा ने झोली भरा है। तो अगर ये समान सदैव याद रहे ना, तो कभी भी हम अपनी खुशी को गवाएंगे नहीं। तो खुशी का, सदा खुशी का आधार है हमारी हेल्थ और हमारी वेल्थ। हम कभी भी भिखारी ना बन जाए, हम कभी भी बीमार दिखाई ना पड़े। कई बार हम दादियों के सामने जाते हैं, थोड़ा शिकल ऐसा होता है तो पूछते कि क्या हुआ, कहते पाँव में दर्द है। तो कहते कि दर्द पाँव में है ना, पर शिकल आपका क्यों ऐसा हो गया है? हाँ, दर्द पाँव में है पर शिकल क्यों खुशी गुम हो जाती? क्योंकि उसको सोचते बहुत है। दर्द इतना होता है पर सोचना बहुत होता है, तो देखने वालों को हमारे ऊपर तरस आती है। तो दर्द हो, जो करना है हम करें, परंतु वो मन तक पहुंचने तक ना दे। खुशी हमारी गुमनाम हो जाना है उसमें, क्योंकि हमको पता है हर एक जो कुछ हो रहा है उसका कारण है। तो बाबा ने वरदान दिया है हेल्थी, वेल्थी एंड हैप्पी, एवर हेल्थी। जो एवर हेल्थी होते हैं, जो एवर वेल्थी होते हैं, वही एवर हैप्पी। तो इस बार मधुबन से आप एवर, एवर शब्द साथ में ले जाइए। एवर माना सदा, एवर और नेवर। तो अगर हमारा हेल्थ एवर है, सदा है, हमारे अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि झोली भरपूर है, तो हमको खुशी जा नहीं सकते। नो, कई बार ब्राह्मण कहते हैं मैं तो वैसे खुश रहता हूं, मैं दुखी नहीं होता हूं, परंतु जब दूसरे थोड़ी दुखी होते हैं ना, उनको देख करके हमारी खुशी खत्म हो जाती है। दुनिया की परिस्थिति को देख करके हमारी खुशी कम हो जाती है, तो वो भी ठीक नहीं है। अगर हम मदद करना चाहते हैं तो पहले हम अपने सीट को संभालें, अपनी स्थिति को संभालें, फिर उसके बाद दूसरों को हम मदद कर सकते हैं। एरोप्लेन में भी क्या कहते हैं, ऑक्सीजन मास्क पहले अपने आप के ऊपर डालो, फिर दूसरों को मदद करो। अगर हम दूसरों को मदद करना चाहते हैं तो पहले हम अपने आप की मदद करें। तो इसके लिए खुशी का आधार ही है वास्तव में ज्ञान। जितना ज्ञान को सही रूप से हम यूज करते हैं, ज्ञान का मंथन करते हैं, उतना हम खुशी में हमारा चेहरा खिला हुआ रहता है। उसका यादगार कौन सा भक्ति मार्ग में आप लोगों को याद आता है? विष्णु सहस्र सैया पर सागर के बीच में सोया हुआ, माना विचार सागर मंथन करते हुए हम इस दुनिया में रहते हुए भी न्यारे और प्यारे रह सकते। जितना हम विचार सागर मंथन करेंगे बुद्धि में, प्योर एनर्जी रिसाइकल होता है, उतना हमारा चेहरा हर्षित रहता। क्योंकि आजकल दादी गुलजार हम लोगों को बार बार कहते हैं, बाबा की प्रत्यक्षता हर एक बाबा के बच्चों से, चेहरे से, चलन से ही होगा। तो हमारी फेस को हमको कैसा रखना चाहिए? सदा हर्षित। तो उसके लिए माया के आकर्षण से परे, जहां माया का आकर्षण है वहां हर्षितपना खत्म हो जाती। तो इसके लिए मन मनाभव का मंत्र सदैव याद रहे। उसी दिन भी बाबा ने वरदान में कहा कि जिस आत्मा का मन मनमनाभव की स्थिति में रहता है, उसका मुख सूर्य कांति के समान खिला हुआ रहता है। मनमनाभव की स्थिति में रहने वालों का मुख सूर्य कांति के समान खिला रहता है, क्योंकि सूर्य का सकाश मिलता है। अगर उसके बदले हमारा मन माया के तरफ चला जाता है तो वो मुरझा जाता है। क्योंकि बाबा ने कहा ना कि आज दुनिया में कितनी अशांति है, कितनी दुख है कि लोग सहारा ढूंढ रहे हैं। कोई सहारा मिले तो हमको ऐसी अपनी चेहरा हर्षित एक विजिटिंग कार्ड के समान रखना चाहिए, ताकि उनको देख करके एड्रेस मिल जाए कि कहां हमको खुशी मिलेगा। एक तो बाबा ने ये होमवर्क दिया है कि हमको खुशी सदा रखना है, कायम रखना है, तो उसके लिए ये कुछ विधियां हमने आपको बताई। परंतु अभी खुशी बांटना भी है ना। खुशी ऐसे मीठी चीज है ना, कहते ना कि कोई आपको कोई मिठाई देवे तो अकेला नहीं खाना है, बांट के खाओ। तो हमारी खुशी बढ़ेगी तब जब हम दूसरों को खुशी देंगे, दूसरों को सुख देंगे। जितना आप दूसरों को देंगे आपको वो वापस 100 गुना बन करके वापस आएगा। तो इसलिए बाबा ने एक स्लोगन दिया है कि उसको अगर हम प्रैक्टिकल में धारण करेंगे तो हम सभी खुश भी रहेंगे, सुखी भी रहेंगे, दूसरे भी हमारे से सुख का अनुभव कर दे। वो सिंपल स्लोगन क्या है, मन वचन कर्म से कभी न दुख देना है न दुख लेना है। हमारा खुशी इसलिए गुम हो जाती है, हम दुख देते नहीं है परंतु ले लेते हैं, लेते हैं ना, इसलिए तो हमको वो थोड़ा सा हर्ट हो जाता है, थोड़ा सा पिंच हो जाता है। तो एक बारी बाबा ने कहा था कि दुख लेना भी हिंसा है, देना तो हिंसा है पर लेना भी हिंसा है। तो अगर हम ऐसे हिंसक कर्म करते हैं तो हम खुश कैसे रहेंगे। तो आज से लेकर हम बुद्धि में दृढ़ संकल्प रखें कि हम दुख तो देंगे नहीं परंतु लेंगे भी नहीं। अगर लेने वाले ही नहीं है तो देने वाले कौन होगा। तो ये भी कौन सा दिल हमको रखना है जिसके आधार से न हम दुख देंगे न दुख लेंगे। उसके लिए कहा जाता है हमारा दिल गोल्ड हार्ट होना चाहिए, न पत्थर जैसे न मोमबत्ती जैसे, परंतु गोल्ड हार्ट, फ्लेक्सिबल। जब हमारे अंदर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, पावर टू अकोमोडेट, पावर टू एडजस्ट, तो हम सबको सदैव सुख बांट सकते हैं। उसमें कुछ अपने को त्याग करना पड़ता है, कुछ अपने को कहां सहन करना पड़ता है, कोई हर्जा नहीं। अगर दूसरे को इससे खुशी होती है, उसको सुख मिलता है, तो हमने थोड़ा समय के लिए कुछ त्याग किया तो कोई कड़ी बात नहीं है ना। परंतु उसी समय अगर हम वो नहीं कर सकते तो हम सेल्फिश बन जाते। इसलिए सुख देने के लिए, खुशी बांटने के लिए निस्वार्थ पना चाहिए, एक्सपेक्टेशन नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑलवेज ब्रिंग्स डिसअपॉइंटमेंट। हम आशा रख करके करते हैं ना, तो वो नहीं होता है तो हम अपनी खुशी को गायब कर देते। नहीं, हम निस्वार्थ होकर के सेवा करते रहे खुशी से, ये हमारा भाग्य है। कभी भी हम सेवा करते हैं मेहरबानी समझ के नहीं, भाग्य समझ करके करते हैं, निस्वार्थपना से। हम भी खुश रहते हैं, हमारे से दूसरों को खुशी मिलती। और वैसे खुशी हम तीन प्रकार से बांट सकते हैं, मन से, वचन से और कर्म से। भले कभी हमको कर्म ऐसा करने का चांस नहीं भी मिला हो, पर मन से भी हम खुशी बांट सकते हैं, मुख से भी खुशी बांट सकते हैं, कर्म से भी। मन से कैसे, और कुछ नहीं करो, सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना, सद्भावना। हमारे से ऐसे अच्छे वाइब्रेशंस, हमारे से ऐसी भावना दूसरों को मिलता जाए तो उनको फील होता है सुख का, खुशी का, और मुख से हम कैसे खुशी बांट सकते कि मीठा बोलने का मधुर वचन। तभी बाबा ने स्लोगन दिया है ना, कम बोलो मीठा बोलो और धीरे बोलो, सोच समझ के बोलो, क्योंकि यही शब्द जो मुख से मैं बोलने जा रही हूं, अगर वही शब्द दूसरा मेरे लिए बोलता तो मुझे कैसा लगता। थोड़ा सा हमदर्दी, कंसिडरेशन, तो फिर हम अपने मिठास आ सकता है। क्योंकि कहा जाता है ना, ये जीभ 2.5 इंच का है परंतु ये कैंची का भी काम कर सकता है, सुई धागे का भी काम कर सकता है। तो अगर हम अपने वचन से दूसरों को खुशी देना है तो हमारे से स्वमान का शब्द, मीठा शब्द, मधुर शब्द निकले। तो इसलिए पहले तोलो फिर बोलो, पहले सोचो फिर बोलो, तो ऑटोमेटिकली हमारे से ऐसा कोई भी शब्द नहीं निकलेगा जिसके कारण हमारे दिल खाता हो या जिसके कारण दूसरों को दुख मिले। एक बारी बाबा ने कहा था, अगर आप किसी को क्रोध से कुछ ऐसा बोल दिया तो वो व्यक्ति आपके बोल को 6 मास तक नहीं भूल सकता। इट्स अ लॉन्ग टाइम ना, समझो 6 मास के बीच में दोबारा बोल दिया तो फिर 6 मास, तो फिर कब हम खुशी बांट सकते। तो इसलिए इंसानियत है कि हमको दूसरे, जो हम चाहते हैं ना कि दूसरे मेरे को अच्छा व्यवहार करे, अच्छा वचन बोले, तो मैं भी सोचूं कि वो भी चाहते मेरे से ऐसे व्यवहार हो। तो मीठा मधुर शब्द, और कर्म से हम कैसे खुशी बांट सकते, कर्म से कैसे खुशी बांट सकते। टोली तो रोज नहीं दे सकते ना मुख मीठा करने के लिए, परंतु हम हरेक के गुण को देके कर्म में आते हुए हरेक आत्मा को संतुष्ट करें। हरेक आत्मा के लिए कर्म हमारा ऐसा हो जो हमको देख करके उसको प्रेरणा मिले। तो ऑटोमेटिकली जब हम मन वचन कर्म से ऐसे हम खुशी बांटते रहेंगे, गिफ्ट है ना। बाबा ने एक बारी कहा था कि आपके पास इतनी गिफ्ट जमा हो कि सारे विश्व की आत्माएं भी आ जाए, आपके पास गिफ्ट खूटे नहीं। तो हम ऐसे गुणग्राही गुण दान करते रहे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर खुशी कभी गुम नहीं हो सकता। इसलिए जो सदा खुश रहते हैं और खुशी बांटते हैं उसकी निशानी क्या होंगी, उसके जीवन वरदान के आधार से चलता रहेगा। उसको इतनी आशीर्वाद मिलेंगी सबसे कि उसको पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वरदान से हम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी क्या, उड़ती कला। हमको चलने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, हमको उड़ती कला, वो आशीर्वाद, वो वरदान हमको ऊंचाई स्थिति पर ले जाएगा। तो इसलिए उसका मुख कैसे रहेगा, हर्षित, सदा खुश रहने वाले और खुशी बांटने वालों का चेहरा हर्षित मुख। और हर्षित मुख सबसे बेस्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर रिवीलिंग बाबा। सदा, कभी कभी नहीं, सदा हर्षित मुख। हर्षित मुख माना मुस्कुराहट, जोर से हंसने की जरूरत नहीं है परंतु मुस्कुराहट। कोई भी परिस्थिति हो तो जब लोग देखते हैं कि इसकी अवस्था एक रस है, कभी ऊपर नीचे नहीं होते, तो उनको प्रेरणा मिलती है। परिस्थिति आएंगी, परीक्षा आएंगी, विघ्न भी आएगा, उन सब बातों को क्या समझना है, साइट सीन्स है। जैसे आप ट्रेन में जाते हैं तो साइट सीन आती है ना, वो तो आप देखते हुए भी नहीं देखते, परंतु अगर हम साइट सीन को मंजिल समझ करके वहां ही खड़े हो जाते हैं तो हमारी खुशी गुम हो जाती। तो प्रश्न समाप्त। खुश रहना माना प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त। जो प्रसन्न चित्त है, चित्त में प्रसन्नता है, वही सदा खुश है। अगर चित्त में प्रश्न है तो हमारा मुख दिखाता है। जिसके चित्त में क्वेश्चन मार्क होगा उसका फेस कैसा होगा? वो भी जिगजैग होगा, क्रुकेड होगा ना। तो इसलिए हमको मन में फुल स्टॉप, जितना मन में फुल स्टॉप की स्थिति, एक्सेप्टेंस, अप्रिसिएशन, तो ऑटोमेटिकली हमारे द्वारा दूसरों को आप ही खुशी मिलता जाएगा। किसी ने कहा खुशी है परफ्यूम। आपने परफ्यूम जानते हैं ना आप लोग, तो अब समझो आप किसी के ऊपर परफ्यूम तब तक नहीं डाल सकते जब तक आपने अपने ऊपर थोड़ा नहीं डाला हो। तो खुशी भी ऐसे परफ्यूम है जिसके ऊपर थोड़ा भी पड़ गया ना, वो छिप नहीं सकता, वो सब तरफ फैल जाता है। तो हम ऐसी खुशी की खजाने को, ऐसी खुशी की खोराक को हम यहां से भर के जाए तो हमारे संग में जो आए वही खुश हो जाए। बिना हम कुछ बोलते मुख से उनको हमारे संग का रंग, क्योंकि खुशी गुम भी होता है संग से, खुशी आती भी संग से है। तो इसलिए हमको संग का बहुत खबरदार रहना है, जैसा संग वैसा रंग। तो इसलिए बाहर के हंसने को हम नहीं कहते कि मुस्कुराहट, हर्षित मुख, वह अंदर से खुशी। तो इसलिए फिर से वही बात हम आते हैं कि बार बार हम ये प्रश्न अपने आप से पूछते, उसका जवाब हम अपने आप के अंदर से देते रहे, मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, मेरा बाप कौन है, मैं किसकी संतान हूं, बाबा ने मुझे क्या वर्षा दिया है, क्या क्या मिली है। तो जितनी हम वर्षे को, प्राप्ति को याद करते रहेंगे तो उतना हमारे अंदर वो जो खजाना जमा है वो इमर्ज होता जाएगा। तो इमर्ज के रूप में रखेंगे तो खुशी दूसरों को दिखाई देगा। तो हमारा चेहरा ऐसा बन जाए, दूसरे खुद पूछे आपको क्या मिला है, आप इतने खुश रहते हो, आपको क्या मिली है, क्या लॉटरी मिली है, तो तब हम उसको सुना सकते। तो इसलिए खुशी बाहर से नहीं आती, अंदर की बात है। तो हम जितना अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे, अपने आप को देखते रहेंगे, अपने आप को चेंज करते रहेंगे, उतना अपनी परिवर्तन से अपने आप को ही अपने ओरिजिनल आदि और अनादि स्थिति स्मृति में आता जाएगा, उतनी हमारी खुशी हमको वापस मिल जाएंगे। तो इसलिए बाबा आने के पहले बाबा ने जो होमवर्क दिया है इस सीजन में, तो हम सदैव माना निरंतर एवर खुश रहे, और जो भी आत्माएं हमारे संपर्क में आवे उनको हमारे से कोई ना कोई प्राप्ति का अनुभव हो। खुशी बांटने का मतलब कि कोई भी आत्मा हमारे समीप आते हैं उनको प्राप्ति का अनुभव हो, उनको फिर बार बार हमारे संपर्क में आने की इच्छा होगी। तो ऐसे हम अपने अंदर की भंडारे को भरपूर रखें, और उसके लिए सहज विधि है हरेक से गुण उठाना। जितना जितना हम हरेक से गुण उठाते जाएंगे हमारे अंदर अच्छाई बढ़ता जाएगा, बुराई निकलता जाएगा। तो हम सभी को अच्छाई बांट सकते, ऐसे महादानी वरदानी हम बन करके यहां से जाएंगे तो हमारे द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो फिर से हम यही कहेंगे कि यही स्लोगन याद रखिए, जो कुछ अब तक हुआ है अच्छा, जो अभी हो रहा है क्या है, बहुत अच्छा, और कल जो होने वाला है अच्छे से अच्छा। अच्छा अच्छा बुराई नहीं तो खुश। आई एम गुड, एवरी वन इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। तो रोने की, मूंझने की, मुरझाने की जरूरत ही नहीं। तो ऐसे धारणा करके हमारे जीवन से दूसरों को लाभान्वित करें। ओम शांति।